कितने वैष्णव है? अनंत कोटि। उसमें से अधिकतर कहाँ है? गोलोक में। गोलोक के और हम मिला के फिर मेजॉरिटी किसकी होती है? वैष्णव की मेजॉरिटी है। वैष्णव कौन है? विष्णु भक्त। जो विष्णु के भक्त है वे है वैष्णव कहलाते। कुछ गणपत्य भी है। गणपत्य कौन होते हैं? गणपति के भक्त। शैव होते हैं, शाक्त होते हैं, ऐसे कई है प्रकार, और उसमें है वैष्णव। विष्णु आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्यते परम। आराधना करनी है तो किसकी करे आराधना? विष्णु की आराधना, परम आराधना। और क्या कहा? तदीया नाम समर्चनम, बीच में रह गया। तस्मात परतरम देवी, आप कुछ नोट भी लिख रहे हैं, याद कर रहे हो? एक तो विष्णु कौन है आपको, वैष्णव कौन है? तो विष्णु का भक्त वैष्णव। सभी वैष्णव नहीं है, वासुदेव सर्वमिति वो है वैष्णव। तो आराध्य देवों में आराध्य आराधनीय विष्णु है, तो परम आराध्य विष्णु है। और तस्मात परतरम देवी, शिव जी कह रहे हैं ये देवी पार्वती उनसे भी कह। तो एक विष्णु को तो परम आराध्य तो कहा, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराध्यते परम। तस्मात मतलब विष्णु से भी, तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, विष्णु से भी अधिक आराधनीय कौन है? तदीया नाम, तदीया नाम समर्चन। तदीय, तदीय मतलब कौन? विष्णु के तदीय, विष्णु के भक्त हो गए। और क्या? तुलसी महारानी हो गई, गंगा हो गई, फिर गाय हो गई, ये तदीय है। तदीय तदीय मदीय चलता है ना, मदीय मेरे तदीय तदीय। तो विष्णु, तो विष्णु से भी अधिक आराधनीय वैष्णव है। वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अगर कोई भक्त है तो वो भक्त मेरा भक्त है। क्या क्यों बैठे हम लोग, क्या सीखने के लिए? वैष्णव संबंध, पहले तो वैष्णव का संबंध भगवान से जब होता है तो ऐसे जिस वैष्णव का विष्णु से या भगवान से संबंध, वैष्णव होता है क्या जिसका विष्णु से संबंध क्लेम करता है मैं वैष्णव हूं? आप स्वीकार करोगे? पहले धागे दोरे का पता लगवाओगे, खाना पाना विष्णु का भक्त है तो वैष्णव, तो वैष्णव का विष्णु से संबंध है, और ऐसे वैष्णव से फिर हमारा संबंध होना चाहिए वैष्णव से। एक समय का है विवाह के समय, वधू का विवाह वर के साथ होता है या दुल्हन का विवाह दुल्हा के साथ होता है, तो संबंध तो एक जुट है, संबंध स्थापित हुआ पति के साथ विवाह में, उस संबंध के साथ कितने सारे संबंध, सास भी आ गई, ससुर भी आ गई, ननद भी आ गई, देवरानी भी आ गई, संबंध तो एक स्थापित हुआ, उस दुल्हन का दूल्हा के साथ संबंध स्थापित होने के साथ वर के साथ जो वर के जो भी संबंध है वे संबंध उसके भी हो गए या उसके कारण वर के संबंध और सारे संबंध स्थापित हो गए। तो हमारा संबंध पर हमारे कई सारे संबंध स्थापित होते हैं, वैष्णव के साथ संबंध स्थापित होते हैं, एक तुलसी के साथ या गंगा के साथ या गाय के साथ। कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एक होती भीड़ और दूसरा होता है कोई समूह होता है, कोई भक्त वृंद है या और क्या कहेंगे, कोई टीम होती है, गट गट अच्छा शब्द नहीं है, गट गट टोली तो चोरों की टोली है। सम्मेलन और फिर सम्मेलन होता है, एक होती भीड़ और दूसरा होता है सम्मेलन कहो। तो दोनों में क्या अंतर होता है? भीड़ में भी लोग इकट्ठे हुए हैं और सम्मेलन में भी लोग इकट्ठे हुए, दोनों में अंतर क्या है? भीड़ में वैरायटी होता है और क्या होता है? जब वहां का कोई भी अनुष्ठान है वो समाप्त होने के बाद भीड़ चली जाती है, पुनः कभी मिलते हैं वे? उनका कोई संबंध ही नहीं होता, कुछ समय के लिए इकट्ठे हो गए फिर अलग हो गए। लेकिन सम्मेलन जब इकट्ठा होता है तो उस पहले का कोई संबंध है, इसीलिए सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन में संबंध को और दृढ़ किया जाता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन में भी हम भक्त है, हमें कैसे होना चाहिए? भीड़ जैसा होना चाहिए कि सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन? ओके, भीड़ में जो लोग इकट्ठे होते उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, स्नेह नहीं, पॉलिटिक्स हो सकता है। एक तो संबंध से फिर आगे बढ़ सकते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले क्या होता है? शेक हैंड, ये पाश्चात्य देश की हम लोग प्रणाम करते हैं। भीड़ में दूसरों को ही प्रणाम करता है, धक्का बुक्की करता है। मतलब वहाँ कोई अनुशासन नहीं है, शिस्तबद्धता, नो डिसिप्लिन, गुंडागर्दी। लेकिन दूसरे जब स्नेह सम्मेलन है तो एक दूसरों से परिचित भी होते हैं, संबंध भी होता है, स्नेह भी होता है और किसी ने कहा कोई विशेष कोई ऐक्य और लक्ष्य भी होता है, कॉमन गोल होता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन में हम चाहेंगे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ में का कोई स्थिरता नहीं है, ऐक्य नहीं है और ज़्यादा कालावधि के लिए वो ठीकता नहीं है। जैसे ईंट का या तो ढेर होता है, हमने ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट या ईंट का एक उसके ऊपर ईंट का दूसरा थर्म रख दिया और उसके ऊपर और एक रख दिया और एक रख दिया, ऐसी दीवार या ऐसी ईंट का जो भीड़ है उसको कोई भी हवा भी आएगी तो गिर सकता है, कोई कुत्ता भी उसको ढकेल के गिरा सकता है। लेकिन जब दीवार बनाते हैं तो केवल ईंट के ऊपर ईंट रखते नहीं, क्या करते, उन ईंट के बीच में सीमेंट होता है, दो ईंटों के बीच में सीमेंट और कई सारे ईंटों के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर उसके बीच में भी सीमेंट होता है, फिर कोई हाथी भी उसको नहीं गिरा सकता, ऐसा भी संभव होगा। तो ईंट, दो ईंट के बीच में सीमेंट है, उससे दो ईंटों का संबंध
स्थापित हुआ। तो उसी प्रकार भक्त और भक्त के बीच में संबंध स्थापित होने के लिए संबंध तो अनिवार्य है, स्नेह का संबंध और कृष्ण भावना भावित संबंध अगर है तो वह फिर हम भी मजबूत होंगे, सब इकट्ठे होंगे। एक समय श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव तिथि महोत्सव वृंदावन में हो रहा था, तो एक भक्त ने पहले उन्होंने कहा कि आप क्या करो, डिवोटीज को अपील किया, आपके बगल में जो डिवोटी है उसके हाथ आप पकड़ो, पैर भी पहले पकड़ सकते हैं बाद में हाथ पकड़ो। और तो जितने सारे भक्त थे उन्होंने किसी न किसी का हाथ पकड़ लिया था, या सभी भक्तों के दोनों हाथ पकड़े गए थे, इधर एक भक्त पकड़ रहा था इधर एक भक्त पकड़ रहा था, सारे भक्त क्या हो गए, जुड़ गए, वी आर वन, वी आर यूनाइटेड। फिर सभी ने हाथ ऊपर हरि बोल करने का हाथ छोड़े नहीं, उन्होंने हाथ ऊपर किए तो वो जुड़े हुए थे और दिखा रहे थे वी आर वन और यूनाइटेड। प्रभुपाद का तिरुभाव उसको चल रहा था, हम प्रभुपाद के साथ है, वी आर यूनाइटेड, हम एक है, ऐसा दिखा रहे थे अपना। तो हाथ जो बढ़ाया उन्होंने वो स्नेह का संकेत रहा, हमारा आपसे स्नेह है, हाथ जोड़ दे रहे हैं इनके साथ भी हाथ जोड़ रहे हैं, आप भी कर सकते हो, ऐसा संभव है यार, कैसे करोगे, पीछे क्या और कुर्सी में बैठे आपका कोई है कि नहीं, हम तो छोटे सभी जुड़े हुए हैं। आजीवन संबंध केवल और इस जीवन के बाद क्या होगा, इटर्नल, हम लोग इटर्नल श्रवण कहते हैं, सदा के लिए शाश्वत संबंध है ये। और ये संबंध वैसे आत्मा का संबंध है, हाथ तो बाहर है इसीलिए हाथ के अंदर क्या है, आत्मा का हाथ है, आत्मा ही नहीं है, आत्मा का हाथ है, तो आत्मा का हाथ पकड़ रहा है। जय गौर प्रेम आनंदे। कैसा लग रहा है, संग त्यागाते वैष्णवाचार, कैसा संग, असत संग त्यागाते वैष्णवाचार। वैसे संसार में संग के बिना या संबंध के बिना हम जी नहीं सकते, जाने अनजाने, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी हमारे संबंध स्थापित होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए कहा है असत संग त्यागा, असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार। वैष्णव का आचरण ऐसा होता है असत संग त्यागात, असत संग को त्यागता है वैष्णव। तो जो असत संगी है उनको अलग कर दिया तो सत्संगी रह गए, तो ऐसे सत्संगियों के साथ हमारा संबंध। और धार्मिक तो कई लोग होते हैं लेकिन हमारा संबंध किसके साथ, वैष्णवों के साथ। तो विष्णु का भक्त वैष्णव होता है, तो विष्णु के सारे गुण वैष्णवों में भी होते हैं, या चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वैष्णवों के या 26 गुण कहे हैं हम लोग झट से इसको थोड़ा, असत संग त्यागात, तो सत्संग उनसे करे जो वैष्णव है, तो उनमें कैसे गुण होते हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस, अगर हम में नहीं है तो स्मरण करने से भी तो वो गुण आना प्रारंभ हो जाएगा, हम सोचेंगे हमें ये गुण नहीं है कब आएगा, हम थोड़ा शोक करेंगे तो वो उदित होगा गुण, या भगवान उनको गुण देंगे, उनको गुणी बनाएंगे। तो अगर आप लिख भी सकते हो, ये नहीं कि लिस्ट उपलब्ध नहीं है, आप अगर लिख रहे हो तो लिख सकते। कृपालु कहा तो संबंध स्थापित करना है वैष्णव के साथ, तो वैष्णव कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, कृपालु। अकृत द्रोह मतलब हम्बल कहा है, या नम्र विनम्र। सत्य सर, इसमें डायक्रिटिक्स दिए नहीं तो शायद कुछ उच्चारण में भेद हो सकता है। सत्य सार ट्रुथफुल मतलब सत्य वचनी कहिए। समा समदृष्टि जिसकी है, इक्वल टू ऑल। निर्दोष फॉल्टलेस, इसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष। निर्दोष ये बंगला भाषा है तो निर्दोष का होना चाहिए था निर्दोष। छठवा है वदान्य दयालु, चैतन्य महाप्रभु तो महावदान्य, वदान्य नमो महावदान्य, तो देने वाले मैग्नानिमस या कृपालु। और ये वदान, ये किसी का दूसरा फ्लेवर है इसमें, वदान्य जो देता है। कृपालु तो कोई कृपालु हो सकता है लेकिन वो उसकी कृपा कृपा है, कृपालु है, लेकिन कोई कृपा देता भी है, कृपा देने वाला कहो, दानी। मृदु मतलब जो कठोर नहीं है वो मृदु है, माइल्ड मृदु मृदु, मिट्टी भी मृदु होती है, मृदंग। सुचि आठवा है, सुचि क्लीन, वैष्णव सुचि होते हैं, सुचि पवित्र होते, क्लीन होते हैं, उनका मन पवित्र, शरीर भी, वस्त्र भी, जहाँ रहते हैं वो स्थान भी। अकिंचन अकिंचन निष्किंचन, निर्धन और उसी में प्रसन्न है, विदाउट मटेरियल पजेशंस। ज़्यादा उनकी कोई भौतिक भौतिक संपत्ति या जो भी संपत्ति उसको आध्यात्मिक बना ही देते तो फिर भौतिक संपत्ति नहीं रही। जैसे हमारे उपानंद प्रभु के पास धन तो है, निष्किंचन तो नहीं है, लेकिन उस धन का जब भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो निर्धन हो गए, हमारा तो कुछ नहीं है, ये सारा किसका है, भगवान का है, तो हम निर्धन हो गए कि नहीं। धनी होते हुए भी हम निर्धन हो सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वह निष्किंचन। तो सुदामा एक समय निर्धन थे और भगवान ने उनको महल बनाया उनके लिए, तो क्या वो धनवान हो गए, निर्धन ही रहे। उस संपत्ति को उन्होंने अपना अपनी संपत्ति नहीं समझा। मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पी लो तो अपदे नंद किशोर, तो आपका ही है, आपको वापस लौटाते हैं और हम हो गए मुक्त हो गए। तो ये वैष्णव का भाव है निर्धन या अकिंचन। सर्व उपकारक, सर्व उपकारक करी कर परोपकार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो रजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, सर्व उपकारक। ग्यारहवा है संत, संत या शांत भी हो सकता है, शांत संत शांति होते हैं। बारहवा है कृष्ण एक शरण, बस और किसी की शरण में नहीं, कृष्ण की शरण और भक्तों की शरण में, या तदीयाना। न तो इसमें मायावाद है, न अन्य देवी देवता है, न तो और कोई है, अनन्य भक्त कृष्ण के। तेरा भाई अकाम, अकाम वैष्णव कैसा होता है, अकाम या निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। तो अभी भी शांत भी हुआ ऊपर गुण, तो काम है इसलिए वो शांत भी है, कामी है तो फिर क्रोधी भी होगा और अशांत भी होगा। अनीह 14 अनीह indifferent to the material acquisitions, वही बात है। तो कोई material, कोई समृद्धि है, धन दौलत है तो है, नहीं है अनासक्त है, अनीह अनासक्त भी कह सकते हैं, वैराग्यवान। 15वां है स्थिर होता है। वैष्णव कैसा होता है? स्थिर। हम लोग एक एक गुण का मान लो कहो लोग स्मरण कर रहे हैं, गुणों का स्मरण कर रहे हैं, स्थिर, फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। ये अच्छा है, ये भिन्न है वैसे। स्थिर तो मायावादी भी कहेंगे हम स्थिर है, लेकिन वैष्णव की स्थिरता किसमें है? इन डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा में स्थिर है। तो भक्ति को कई बार डिवोशन कहते हैं और मायावादी और लोग भाष्यकर, भक्ति मतलब क्या? डिवोशनल सर्विस होना चाहिए, लेकिन बाकी लोग डिवोशन कहेंगे। तो केवल डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस, केवल आई एम फिक्स्ड अप, तो हम बैठे रहेंगे लेकिन हम उठेंगे दौड़ेंगे तो हम हो गए, फिर हम स्थिर है। एक समय मैं भी स्थिर, मैं सोचा था मैं स्थिर था, जब अभी नया था, मैं नया डिहोड़ी, तो मैं मंदिर में अधिक रहना थोड़ा पसंद करता था, मंदिर विग्रह के समक्ष, बाकी भक्त तो विदेश के वगैरह बाहर जाने के लिए बड़े उत्कंठित रहा करते थे, मैं थोड़ा मंदिर में रह के फिर वही जो भी कीर्तन भजन ये सब या विध्यान। तो मेरे प्रेसिडेंट ने कहा कि दिस इज समाधि दास, ये ध्यान में लगना चाहता है, समाधि दास, इज अ समाधि दास। तो फिक्स्ड है हम ध्यान में, फिक्स्ड, लेकिन या स्थिरता को क्या कहा है? फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। 16वां है विजित सत्गुण, विजित सत्गुण, कंप्लीटली कंट्रोलिंग सिक्स बैड क्वालिटीज, लस्ट एंगर ग्रीड, मतलब षड विकार जो है या षड शत्रु है, क्या करे, षड रिपु, षड रिपु से मुक्त है। विजित षड गुण नहीं, अवगुण होने चाहिए, अवगुण है। मित भुख, मित भाष भी होते हैं, मित भाष उतना ही बोलना जितनी आवश्यकता, स्पीच कंट्रोल, तो यह मित भुख भोजन की बात है, उतना ही ग्रहण करना जितनी आवश्यकता है, जितना हम उसको पाचन कर सकते हैं। 18वां अप्रमत्त मतलब पागल, अशक्ति के कारण तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, तो कुछ नहीं करना चाहिए पाप कर्म इत्यादि तो भी व्यक्ति कर बैठता है, क्यों? प्रमत्त निधनम, वो अशक्त रहता है, मैड, तो अप्रमत्त। लेकिन भक्त कैसा? भक्त अप्रमत्त, सारी दुनिया प्रमत्त अप्रमत्त, मैड वर्ल्ड कहते हैं ये वर्ल्ड का, वर्ल्डली लोगों ने किसी ने वर्णन किया, ये वर्ल्ड कैसा है? मैड वर्ल्ड, मतलब प्रमत्त जगत। एक ही बार नहीं कहा हरेर नाम, मैड रियली बैड वर्ल्ड, अप्रमत्त वैष्णव। 19 है मान द, मान देने वाला, और उनका मान सम्मान करते हैं वैष्णव, इसके लिए वो विख्यात है, मान द अमानिना मान देन कीर्तन। अमानी 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 ना अमानी मतलब अपना खुद का सत्कार सम्मान नहीं चाहने वाला, विदाउट फॉल्स प्रेस्टीज, माना तो मान देने वाला, अमानी मतलब अपने लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करने वाला, मानद अमानी। और गंभीर कहा है, 21वां है गंभीर। वैष्णव कैसा होता है? गंभीर, सीरियस, ग्रेव। 21वां यस, 20 अमानी था, दो है ना, मानद एक है 19वां और अमानी 20 है, अमानी केवल। और 21वां गंभीर है ग्रेव, 22 है करुणा, करुणा या उसका कारुण्य कंपैशन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जानी रे, चौरों की पीड़ा को जानता है, समझता है, कुछ करता भी है प्रयास, उसको कहते हैं करुणा। उसकी मैत्रीय या मैत्री पूर्ण व्यवहार, ए फ्रेंड, फ्रेंडली। वैष्णव कैसा होता है? फ्रेंडली, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, शास्त्रों में कहा है वैष्णव के बारे में कहा मैत्री। ईश्वरे, ईश्वर में प्रेम करता है, ये दूसरी बात है, ईश्वर में उसका प्रेम है, वैष्णव में उसकी मैत्री है, और जो श्रद्धालु है उन पर कृपा करता है, और जो बदमाश है उनको दूर से नमस्कार करता है या बाय कहता है, फिर मिलेंगे या कभी नहीं मिलेंगे, उनकी उपेक्षा करता है। मैत्री, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये भी वैष्णव के गुण हो गए। भगवान में प्रेम, चारों के प्रति अलग अलग उसके भाव है, भगवान से प्रेम करता है। वैष्णव में मैत्री है और श्रद्धालुओं के प्रति उसकी दया है, और जो अश्रद्धालु है फेथलेस, उनकी उपेक्षा करता है। तो या मैत्री का, मैत्री फ्रेंडशिप 23। और 24 है कवि, कविताम, सुंदरी कविताम, ऐसी ऐसा कवित्व नहीं चाहिए, सांसारिक कविता, पोएटिक लैंग्वेज जैसे बोलता है, कभी कविता भी कर सकता है, या कोई भाष बोल भी रहा तो थोड़ा मिठास है या कवित्व है, कुछ कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करता है, अलंकृत उसकी भाषा हो सकती है, तो कवि पोएटिक, पोएट। और 25वां है गुण दक्ष होता, दक्ष, प्रजापति भी दक्ष थे, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन व्हाट, पटु, निपुण, जागृत, मराठी में चलता है दक्ष मतलब जागृत, सावधान, लेकिन यह एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट का, निपुण, कुशल, भगवान की सेवा में कुशल, हर बात में कुशल, एक्सपर्ट, इज एक्सपर्ट, इज एक्सपर्ट, और दक्ष, अत्रादि दाक्षात अतिवल्लभश्च, उसमें भी पटु है, राधा कृष्ण के लीला में दक्ष या कुछ उनका मिलन कराता है या कुछ दक्ष। और 26वां है मौनी, मौनी, मौनी बाबा। इस मौनी का और कौन से गुण के साथ संबंध? कम बोलना, मित, स्मित भाग, मित भूख, भूख हो गया, ये मित भाष, मित भाष कहते ना संस्कृत में, भाष, भाष भी है ना भाषा, मित भाषी कहते हैं, मित भाषी। तो या मौनी, मुनि है, मुनि कैसे होते हैं, मौनी भी होते हैं मुनि, कभी कभी अलग अलग भी मुनि मौनी होते हैं, कुछ मौनी तो लिखते भी है और कुछ ऐसे मौनी है तो कुछ लिखते भी नहीं, कुछ जड़वत। तो ये 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, इसका स्मरण करना चाहिए सभी वैष्णवों को और देखना चाहिए कि हमारे हम मित भूख है कि नहीं, मान अद का कैसे चल रहा है हमारे जीवन में, अमानी हम है कि नहीं, वदान्य या कृपालु या मैत्री अकिंचन, ये सब शांत अकाम अनीह कुछ परीक्षण कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे सद्गुणी सर्वगुण संपन्न वैष्णव के साथ हमारा संबंध, ये संबंध हमारे भगवान या भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में योगदान देता है। जिनका केवल भगवान से ही संबंध है और दूसरी पार्टी उनका भगवान से भी संबंध है और भगवान के भक्तों से भी संबंध है, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान और भगवान के भक्त। तो जिनका केवल भगवान के साथ संबंध है और औरों के साथ संबंध है तो गाली गलौज करता है, वैसा भी संबंध है, संबंध होता है, किसी ने तमाचा लगाया तो संबंध हो गया ना, उसका तो मैं मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ, वो भी संबंध है, या संबंध तो तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक संबंध की बात यह हो रही है। तो जिसका संबंध केवल भगवान के साथ है, भगवान के विग्रह की आराधना तो खूब करता है, जय जगदीश हरे कृष्ण, लेकिन वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ, कृष्ण भक्तों के साथ उसका संबंध नहीं है या सही संबंध नहीं है। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जिसका कृष्ण और कृष्ण भक्तों के वैष्णव के साथ संबंध है। पहले को क्या कहा है? पहला भक्त किस प्रकार का होता है? कनिष्ठ भक्त। जिसका केवल कृष्ण के साथ संबंध है वो उत्तम हुआ, मध्यम हुआ, मध्यम भी नहीं हुआ, भी कनिष्ठ भी नहीं हुआ, मध्यम भी नहीं, फिर क्या बच गया? कनिष्ठ, थर्ड क्लास का, अच्छा नहीं लगता सुनने में। जो केवल कृष्ण का भक्त है और किसी का नहीं, केवल पूजा करता है, नमस्कार ठोकता है भगवान को, ऐसा कुछ करता है, दौड़ गया। तो प्रातःकाल में एक बाबा जी आते हैं, बड़ा विनम्र भाव से तुलसी को फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं भक्तों से, एक एक को, भक्त तो अपने जब में तल्लीन है, लेकिन ही इज ऑफरिंग हिज ऑबेसेंसेस, श्रील प्रभुपाद को फूल चढ़ाता है, पूरा साष्टांग दंडवत वृद्धावस्था है। तो ये उच्च स्थिति भाव की भाव है, तो एटलीस्ट, तो ये थर्ड क्लास नहीं है, ये एटलीस्ट सेकंड क्लास है, ये मध्यम मध्यम अधिकारी, अलग अलग अधिकारी। तो कितने होते, कितने प्रकार के होते अधिकारी? तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी, एक कनिष्ठ, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जो केवल भगवान, भगवान एक है भगवान, और कोई नहीं, तो हो गया कनिष्ठ। लेकिन जो भगवान और भगवान के भक्त भी, उनकी भक्तों की आराधना करता है, भक्तों की पूजा करता है, भक्तों की खूब सेवा करता है, केवल खुशामत ही नहीं करता, केवल स्तुति ही नहीं करता, कुछ प्रैक्टिकल सहायता भी, सेवा करता है। तो भगवान को 56 भोग लगाते हैं तो भक्तों को भी होना चाहिए, पंच क्या कहते, पांच पंच पकवान केशव को बताया पंच पकवान, पांच पकवान में तो जैसे चतुर्विधा श्री भगवत कहा, लेकिन यहाँ पांच कहाँ से आ गए, पूरी खीर। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये भगवान के भक्तों के हमारे आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद। षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो केवल लिप सर्विस ही नहीं भक्तों की, जो भी स्तुति है या भक्तों का, भक्तों वाह 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 वाह, हरि बोल, कोई अभिनंदन किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन और भी कोई प्रैक्टिकल, रूप गोस्वामी कहता ददाति प्रतिगृह्णाति, तो संबंध की बात हम लोग कर रहे हैं तो संबंध प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, कोई थियोरेटिकल या मानसिक संबंध नहीं। उसमें मानसिकता भी हो उस संबंध में, वाचिकता भी हो उस संबंध में, कायिकता भी हो, आप लिख सकते हो कुछ नए शब्दों में हम कह रहे हैं, तो संबंध भी मानसिक संबंध हो सकते हैं, मेंटल, मन ही मन में, बाहर नहीं दिखाते, वाचिक संबंध, कभी कभी केवल मेंटली हमने किसी को अप्रिशिएट किया तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसको कहना उचित है, कहना चाहिए। मन में कोई अच्छे विचार आए, किसी की प्रशंसा करनी है, कुछ अभिनंदन, तो केवल मेंटली किया तो श्रील प्रभुपाद एक समय दिल्ली में सत्संग में बैठे थे तो एक महिला से, एक माता जी से, यू चैंट हरे कृष्णा, तो शी सेड आई एम ऑलवेज चैंटिंग, मैं सब समय जप करती हूँ, कैसे, मेंटली। तो प्रभुपाद कहे जब भोजन का समय आता है तो डू यू ईट मेंटली, तुम्हारा ईटिंग मेंटल होता है, उस समय तो फिजिकल होता है, फिजिकली यू ईट, तो ये जब वाई दिस मेंटल जब, इसको बोलो, कुछ कहो, अंदर जो है उसको प्रदर्शित करो। और जब किसी से हमारा अधिक प्रेम होता है, अधिक स्नेह होता है, तो फिर वो अंदर छिपाने से भी छिपता नहीं है, तो नए नए कोई है तो शुरुआत में तो मोबाइल पर ही चल रहा है या जब चिट्ठी जा रही है, पत्र जा रहा है या कुछ, बाद में जब बढ़ जाता है तो फिर वो आप मिलते हैं, बात करते हैं, मन में नहीं रखते, उसको छिपाना भी कठिन होता है, उसका प्रदर्शन हो जाता है, सभी समझ जाते हैं, और फिर व्यक्ति फिर भेंट लेके आता है, गिफ्ट, इज ब्रिंगिंग गिफ्ट, तो पहले तो मन में है, बाद में कुछ बोलता है, कुछ वाचिक हो जाता है, और ऐसा समय आता है वो फिजिकली कोई गिफ्ट, कोई भेंट लेके आता है। तो उसी प्रकार वैष्णवों के साथ उसे मेंटली भी अप्रिसिएशन नहीं है तो ये खराब बात है, ऐसा कहा है शास्त्रों का। ये किसी वैष्णव को हमने आते हुए देखा, कोई वैष्णव आ रहे हैं तो मन में विचार आओ, दोबारा आ गया वही, आ गया, देखो आ गया, तो मेंटली भी उसका स्वीकृति नहीं है, प्रसन्नता नहीं, मन में भी नहीं आया विचार स्वागत का या प्रसन्नता का, तो दिस इज रियल ए बैड स्टेट। हमारी मानसिक जो स्थिति है बड़ी पतित है, तो इसको तो स्थान होना ही नहीं चाहिए। फिर कुछ अच्छे विचार मन में आ गए कि वैष्णव आए हैं वो भी अच्छा है, लेकिन उसको अगर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैष्णव आ गए तो क्या करते हम लोग, पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च दितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः, तो ये वाचिक हुआ, मानसिक वाचिक, और क्या कर सकते हैं फिर, हाँ, काई क्या करोगे वैष्णव के लिए फिर? आइए आइए, बैठिए बैठिए, पधारिए पधारिए, और खाबेर जल क्या देंगे? बंगाल में आप हो तो कैसा जल दोगे? खाबेर जल, खाबार जल, खाबार जल, ओके, थैंक यू फॉर खाबार जल। मतलब केवल जल नहीं देंगे, पहले कुछ खाने के लिए देंगे और साथ में जल भी देंगे। ये बंगाल में पद्धति है, केवल जल नहीं, खाबार जल, खाने का जल क्या देते हैं? खाबार जल, मतलब कुछ खाने को भी देते हैं फिर बाद में पीने को भी देते हैं। चलो चलो किया, चलो खाना। तो ये मानसिक हुआ, आई मीन मानसिक वाचिक कायिक, मानसिक वाचिक कायिक हुआ, तो और कुछ बचा ही नहीं फिर। हमने हर तरह से उस वैष्णव का मन से स्वागत किया, प्रसन्नता मुख से कुछ वचनों से स्वागत किया, प्रसन्नता व्यक्त की, और कुछ किया भी प्रैक्टिकली उनके लिए, उनकी सेवा की, सहायता की। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, रूप गोस्वामी ददाति प्रतिगृह्णाति, प्रीति लक्षण, प्रीति के लक्षण, आपका प्रेम है वैष्णवों से, संबंध है, और केवल कहने की बात नहीं है, आप सिद्ध करना चाहते हो तो क्या करोगे? ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ दोगे आप और लोगे भी आप, कुछ भेंट दोगे, ददाति प्रतिगृह्णाति, और भूखते हो जाते चाहे वो भोजन भी होगा, वे भी बुलाएंगे आपको उनके घर पर भोजन के लिए, या आपके घर पर भोजन ले आएंगे या प्रसाद ले गए। मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ, ये प्रसाद ले लो, पंढरपुर से आ गया मैं, ये राजी राधा गोविंद के लड्डू लीजिए, जयपुर से आया हूँ मैं, और कहाँ से आया हूँ, खीर, खीर चोर गोपीनाथ की खीर लीजिए, ऐसा कोई विशेष, कहाँ का? बालाजी का लड्डू लीजिए, एक तो ऐसा मोटा होता है। तो आप दोगे और वे भी लेंगे और देंगे भी, ये नहीं कि केवल ले ही रहे हैं, ओनली टेकिंग पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? देना भी चाहिए, लेना चाहिए, लेन देन, ये तो संबंध और स्नेह का प्रतीक है, लक्षण है, वन वे ट्रैफिक नहीं, बोथ वेज, गिव एंड टेक, ये तो संबंध है, स्नेह है। और फिर क्या? भूंगते ना, गुह्यम आख्यति, गुह्यम आख्यति, कोई गोपनीय बात, गुह्यम आख्यति कहना, और प्रच्छति पूछना, गोपनीय बात, कोई मन की बात, कोई दिल की बात, कोई हो सकता है कोई खुशी की बात, या कोई कठिनाई की बात हो सकती है, कोई शंका कुशंका भी हो सकती है जो सभी को नहीं पूछी जा सकती, तो कोई विशेष भक्त को फिर मिलके कॉन्फिडेंशियली, फिर उसी को कॉन्फिडेंशियली कहेंगे जिस पर हमारा विश्वास है कि इस कॉन्फिडेंशियल बात को अपने साथ ही रखेंगे, इसको सीमित रखेंगे, अपने उसका प्रचार नहीं करेंगे, प्रसार नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंस, मैं तो कहते किसी माता जी को कहो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, और उसको ये भी कहो किसी को कहना नहीं है, फिर क्या करेगी? तो कुएं पर पानी लेने के लिए प्रातःकाल में जो और माताएं आती है वहीं पर बैठी रहेगी, जितनी भी आती है माताएं, एक एक को, तो फिर विश्वास नहीं होगा। एक बार तो गोपनीय बात कह के देखी हमने, लेकिन गोपनीयता का उल्लंघन या भंग किया, तो दिस इज, तो गुह्यम आख्यति, वक्त को कोई ऐसा समय आता है जीवन में कोई सहायता की आवश्यकता, कोई गोपनीय बात सभी को नहीं कही जा सकती, तो किसी से सलाह करे, कोई विशेष प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, कोई धर्म संकट है या कुछ बात है तो गुह्यम आख्यति कहना और प्रच्छति पूछना। षडविधम प्रीति लक्षणम ये प्रीति के लक्षण है और इसी के साथ हमारा वैष्णवों के साथ संबंध भी स्थापित होता है, दृढ़ संबंध स्थापित होगा स्नेह के साथ, ताकि हम फिर वो जो वैष्णवों का समाज है राधा दामोदर वैष्णव समाज या राधा गोपाल वैष्णव समाज या तो कहे पर क्या क्या राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ ऐसे भी नाम देते हैं भक्त समाज, हम उस समाज या वो सम्मेलन या वो नहीं रहेगा, हम लोग भीड़ भीड़ जैसा भीड़ भाड़ तो प्रीति लक्षणम तो इसका अभ्यास करना है हमें अपने अपने मंदिरों में अपने अपने क्षेत्रों में सिक्स लविंग एक्सचेंजेस किया। यह कहा है सीनियर्स जूनियर्स पीयर्स यानी कि सभी के साथ हमारा एक जैसा ही संबंध होगा, हम रोबोट्स नहीं है मशीन जैसा, तो हर एक स्तर अलग अलग है, हमसे कोई बड़े है फिर बड़ा कौन, बड़ों के क्या लक्षण है वो भी समझा जा सकता है और या समकक्ष कौन है, हम जिस स्तर पर है उस स्तर वाले कौन है जिसको पीयर्स अंग्रेजी में पीयर्स तो सुपीरियर्स पीयर्स और जूनियर्स कम से बड़े या और हम जैसे ही और हमसे कुछ नए या जूनियर्स, तो हर एक के साथ हमारा संबंध थोड़ा भिन्न भी होगा। जैसे हम भागवत में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर आए पांचों पांडवों के साथ मिल रहे थे, युधिष्ठिर से जब मिले तो श्री कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर के समक्ष झुक के उनके चरणों को स्पर्श किया, श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के चरणों को स्पर्श किए सुपीरियर्स। और जब अर्जुन को मिले या भीम अर्जुन से मिले तो उनसे तो गले लगाए, और जब नकुल सहदेव से मिलना था तो वे दौड़े और कृष्ण के चरणों में गिर गए, कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया नकुल सहदेव ने वो संबंध हुआ। इस प्रीति लक्षणम के अलग अलग और एक के साथ गले लगा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज के चरण छू रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण, तो ये इस संबंध और सदाचार अलग अलग भिन्न वैरायटी है, स्टीरियोटाइप नहीं है। तो हमारे समाज में भी वैष्णव समाज तो ये आदर्श है, भगवान स्वयं ही आदर्श सिखा रहे हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ। तो इस पुस्तिका में एक हम देख रहे हैं इसमें लिखा है सीनियरिटी डिटरमिन्ड इन फाइव डिफरेंट वेज, तो सीनियर कौन है इसका नापदंड, किसको कौन सीनियर है, तो यहाँ पांच कंसिडरेशंस बता रहे हैं। एक तो वर्ण का, किस वर्ण के है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनसे भी सीनियर जूनियर उसमें हो आ जाते हैं। फिर आश्रम, एक वर्ण फिर दूसरा आश्रम, और हमारा धर्म ही वर्णाश्रम धर्म, तो आश्रम आश्रम भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो ब्रह्मचारी से बड़ा हुआ गृहस्थ के छोटा हुआ वैराग्यवान में से गृहस्थ ब्रह्मचारी का सम्मान सत्कार करते हैं क्योंकि उनका वैराग्य उनका डिटैचमेंट उनका ज्ञान ब्रह्मचारी का ज्ञान वृद्ध, वेरी गुड, तो ज्ञान वृद्ध ब्रह्मचारी ज्ञान वृद्ध हो सकते हैं होने चाहिए। इसलिए जो वयोवृद्ध है वे ज्ञान वृद्ध से उनका सम्मान सत्कार करेंगे। और दीक्षा, टाइम ऑफ इनिशिएशन, ये भी कंसिडरेशन है, ये भी विचारणीय है, किसकी दीक्षा कब हुई थोड़ा देखा जाता है। I'm 20 years initiated, लेकिन फिर उसका 20 ईयर का सारा जो रिकॉर्ड है, उसका जो इतिहास है, वो भी विचारणीय है। 20 साल पहले दीक्षा तो हुई, लेकिन फिर और क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तो एक विचार तो है, कितने कब किसकी दीक्षा कब हुई, कौन 5 साल पहले और कौन 20 साल पहले वाला। लेकिन उसमें भी वर्णाश्रम देखना होगा, एज, चौथा का एज, उस व्यक्ति का जो उम्र है, हो सकता मंदिर का मैनेजर कर्मचारी है या दीक्षित तो बहुत सालों से है, लेकिन एज के दृष्टि से कोई अधिक उम्र वाले हैं, उनका सम्मान करना होगा। उम्र का सम्मान है, एज का सम्मान है, सत्कार है। यस, वृद्धा, मैच्योर या ओल्ड एज, एक्सपीरियंस, विजडम उसके साथ भी आता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। तो सीनियर हो सकते हैं, एज से सीनियर, तो वर्ण से, आश्रम से, दीक्षा से, एज से, और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कहा है, इस अधिक महत्वपूर्ण है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से हम देख सकते हैं, अपनी ओर देख सकते हैं और भक्त की ओर देख सकते हैं, वो कितना प्रगत है। जूनियर हो सकता है, लेकिन काफ़ी क्वालिफाइड है या ज्ञान वृद्ध है, तो वो भी एक दृष्टि से सीनियर हुआ, एज के दृष्टि से जूनियर है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के दृष्टि से वो वरिष्ठ हो सकता है। ओके, तो हुआ। तो वैष्णव संबंधों में और कुछ स्मरणीय बातें हैं, उसमें सर्वप्रथम तो लिखा है obeisances and respect, ये जो प्रणाम है, वैष्णव प्रणाम, कौन से गोस्वामी, वो 2000 सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, और प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो परिक्रमा में जब वे जाते और दिन भर भी मिला के और परिक्रमा में जो वैष्णव आते थे, उनके 2000 दंडवत हुआ करते थे, दिन में 2000 भक्तों को प्रणाम करते। हम जब से जन्मे हैं 2000 नहीं प्रणाम किए होंगे, नहीं किए होंगे, हम कहते थे, कहते या लिखते थे, कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि, लेकिन प्रणाम करने का समय आता तो आधा भी ऑफर नहीं करते दंडवत, लेकिन कोटि कोटि दंडवत। तो जितना झुकेंगे हम, ये नम्रता है, उस व्यक्ति का सत्कार है, और ये उस व्यक्ति का ही सत्कार नहीं है। वैसे प्रणाम किसको करते हैं हम, जब वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो हम किसको प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, मतलब भगवान का प्राकट्य उनको उनमें हम देखते हैं, उनके जो गुण है, जिसका हमने अभी स्मरण किया 26 गुण, ये गुण उनके खुद के तो नहीं है, ये गुण आए कहाँ से, उसका स्रोत क्या है, भगवान ही है, ये ओरिजिनली ये गुण भगवान के हैं। तो जिसमें ये गुण प्रकट है तो उसको देख के फिर प्रणाम, पौरुषम दृश्य, वेरी गुड, भगवान जैसे कई बातें कहे हैं 10वें अध्याय में गीता के, उसमें एक कहे हैं पौरुषम दृश्य, नरी, नरी मतलब मनुष्य, उसमें नर नारी दोनों भी आ गए, नरी नृष्य मतलब नर नारियों में, वैष्णव में कहिए वैष्णवी में, तो हुआ पौरुषम नृष्यु, पौरुषम एबिलिटी इन मैन और वुमन, एबिलिटी उनका सामर्थ्य, उनकी क्षमता, उनकी दक्षता, ये जो सारे गुण है उनकी कार्य क्षमता, या ये पौरुषम नृष्यु उनमें जो ये सद्गुण है या उनकी तत्परता या कार्यक्षमता या दक्षता या निपुणता, ये जो या जो भी और भी गुण है वो नृष्यु मैं हूँ, ये मेरे कारण है या मैं ही हूँ, वहाँ मुझे देखो, ये गुण जहाँ प्रकट है तो वो गुण व्यक्ति में तो प्रकट हो रहा है, लेकिन है ये गुण किसका, मेरा गुण है, तो वह भगवान को देखो और फिर वह ऐसा चमत्कार देख के वह क्या होना चाहिए, नमस्कार होना चाहिए, ऐसा चमत्कार उस भक्त या वैष्णव वैष्णवी में हमने देखा तो वह भगवान का प्राकट्य देखा हमने, वे भगवान नहीं है लेकिन भगवान के गुण, भगवान के या पौरुष, पौरुषत्व, गोविंदम आदि पुरुषम जो पुरुष है, तो पौरुषम नृष्यु मेरा जो पुरुषत्व है, पौरुषम नृष्यु, तो वह फिर वह नमस्कार, तो ओबेसेंसेस, तो वह प्रणाम कर देगा, ये पहली बात है। यस, इसमें भी कुछ संख्या है, नंबर चल रहे हैं। दूसरी बात कही है स्पीच, यहाँ तक हम पहले तो प्रणाम किया एक बात हुई और दूसरा स्पीच, यहाँ तक स्पीच की बात है, उसमें कुछ सब टॉपिक्स आए हैं। कहते हैं नेवर यूज अनप्लेजेंट वर्ड्स, कभी भी कैसे शब्द अनप्लेजेंट और उनको दुख देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले या निंदा के कठोर वचन, तो मृदु तो है ही, वैष्णव तो मृदु कहलाया है और मित भुक भी है, मित भाष भी है, बोलेगा नाप तोल के बोलेगा, वैसे वो कैसा बोलता है, नाप तोल के बोल, सोच के बोलता है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलता है, तो वो जो भी बोली है, तो जहाँ तक बोलने स्पीच की बात है, नहीं तो हिंसा होगी, हिंसक वचन हिंसा युक्त हो सकते हैं, तो वाणी से हिंसा ना करें, नेवर लाय असत, वो तो वो आ गया ट्रुथफुल, ये थोड़ा उल्टा कहा, निषेध की बात करें तो विधि में तो आ ही गया, क्या करना, वैष्णव क्या करता है, सत्य वचनी होता है, नेवर लाय, डोंट स्पीक बैडली ऑफ अदर्स, मतलब निंदा नहीं करे, प्रजल्प ना करे, उसमें फिर आ गया बहुत सारा, क्या करे, प्रजल्प ना करे, प्रजल्प करेगा तो क्या होगा, भक्तिर विनश्यति, भक्ति का नाश होता है, प्रजल्प करने से, निंदा करने से, पॉलिटिक्स की बात, ये वो चुगली करना, ये क्या क्या, फिर कठोर वचन भी कहो या, तो सावधान किया, सावधान साधु, सावधान वैष्णव, सावधान अत्याहार, अत्याहार क्यों करेगा, वो मित भूख बताया है, अत्याहार फिर प्रयासश्च अकिंचन बताया है, निर्धन बताया उसको, अत्याहार प्रयास से प्रजल्प कहा, उसकी मित भूख मित भाक भी है, वो क्या मृदु उसके वचन भी है, ऐसे कई सारे गुण है, तो ऐसा सद्गुणी है तो अत्याहार प्रजल्प भी नहीं होगा, और फिर क्या, जनसंघर्ष नियम आग्रह, यस, तो हर नियम को समझेगा वो, इस नियम को क्यों पालन करना है, इसका शास्त्र, उसका तत्व, हम पढ़ते हैं कि बेटर देन नोइंग द वेदस टू नो द पर्पस ऑफ द वेदस, ये अधिक महत्वपूर्ण। वेदों को जानने से अधिक महत्वपूर्ण वेदों का उद्देश्य क्या है ये समझना होगा। तो कुछ लोग तो वेद को ही जानते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं जानते हैं। क्या उद्देश्य है? वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः, मुझे जानने के लिए वेद है। तो वह अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियम आग्रह, तो नियम भी जो है वेदों के उसमें भी कर्म कांड ज्ञान कांड और सब कुछ है। तो कर्म कांडी होते बहुत सारे नियम बनाते हैं विधि निषेध के। किसी ने चैतन्य महाप्रभु के समय सुबुद्धि राय थे बनारस में, बनारस, तो कुछ मुसलमानों ने उनका कुछ जल छिड़काया उनके मस्जिद का या कुछ मंत्र कह के उनका मुस्लिम मंत्र, उसको कन्वर्ट किया, धर्मांतरण किया। तो फिर जो कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मण, तुम तो अभी अस्पृश्य, दूर रहो, तुमको तो धर्मांतरण किया, उन्होंने कुछ छिड़काया तुमका जल, मैंने प्लीज एक्सेप्ट, मैंने स्वीकार कीजिए, स्वीकार करो, नहीं संभव नहीं है, एक हो सकता है, आप क्या करो, नहीं घी पियो, उबाल के घी को खूब उबालो, उसको पी लो, यही हो सकता है। ऐसे स्मार्ट ब्राह्मणों ने उपाय बता दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि आप चांड हरे कृष्ण एंड गो टू वृंदावन। स्मार्ट ब्राह्मण जो नादा लागू ना कहा जाओ वृंदा चांड हरे कृष्ण गो टू वृंदावन। तो नियमाग्रह थे कर्म कांडियों के, कई सारे नियम और कई सारा हार्ड एंड फास्ट रूल्स और क्या क्या होता है, तो कब किसका नियम का पालन करना नहीं करना कितना करना, इसका सब है। तो नियम को जानने के पहले नियम का क्यों पालन क्या सारा समझना होगा। तो नियम आग्रह और जनसंघर्ष, ये तो शुरुआती है, जो वैष्णव कैसा होता है, असत्संग त्यागात, ये वैष्णव आचार। जनसंघर्ष लौल्यस्य लोलुपता या ग्रीड, तो उसमें भी गुण आ गए, निर्धन रहता, निष्कंचन रहता, ऐसा रहता वैसा रहता, 26 क्वालिटीज में। तो ये निगेटिवली दोनों विधि बताई, 26 गुण का पालन करने से फिर ये आपसे नहीं होगा। ये षड्विधम प्रीति लक्षण का भी फॉलो किया तो आहार निद्रा भय मैथुन नहीं होगा। तो होगा यह तो डोंट स्पीक बैडली अबाउट अदर्स लिखा है, और वी शुडंट लुक एट द फॉल्ट्स, औरों में दोष नहीं देखना चाहिए। दोष किस में देखना चाहिए? खुद में दोष देखो और औरों में गुण देखो। दोष देखते 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 क्या होगा, वो दोष हम में आ जाएंगे। दोष का इतना स्मरण करते 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 औरों के दोष का स्मरण किया तो हम ही दोषी बन जाएंगे। क्या हम जब कहते ही है, जब औरों के एक उंगली दिखाई औरों की ओर, तो हमारी ओर कितनी उंगली, हम तो कहे यू ना, यू उंगली ना, यू ये उंगली कहे यू नॉट यू। तो बद्ध जीवों में आपल्या डोळ्यातलं काय दिसत नाही, मुसळ दिसत नाही, आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतंय। कुसळ आप अगर शेतकरी हो, किसान होना पड़ेगा तब आप कुसळ समझते हो, समझ सके कुसळ, घास का तिनका, ये घास एक चुभता भी रहता है वो, हाँ कुसळ। आप कभी जाओगे पहाड़ में तो वहाँ कुसळ होता है, छोटा सा घास का तिनका, चुभता भी रहता है, नुकीला होता है। तो वो किसी के किसी दूसरे के आँख में है, खुद के आँख में तो मुसल है, मुसल समझते हो, मुसल जो बलराम मुसलधर है, और उससे सत्य ना दो उखल उखल बंधन उखल में भी पेस्ट पेस्ट हो गया। तो मराठी में कहावत है कि औरों के आँख में कुसल है वो दिखाई देता, हमारे आँख में मुसल है, हमारे आँख मुसल वो नहीं दिखाई दे रहा, औरों के आँख में केवल कुसल है। तो देखो देखो सर, अरे व्हाट अबाउट तुम्हारा तुम्हारा मुसल का देखो, पहले देखो। तो औरों में दोष ना देखे, औरों के गुण देखे और अपना दोष, ये स्पीच में आ गया। डोंट लाफ टू लाउडली, जोर जोर से सात मजली, हास्य कैसा सेवन स्टोरी टॉल, ऐसा सात मजली हास्य मराठी में कहते हैं। तो लोग इतना हंसते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं तो सारे बिल्डिंग को हिलाते हैं या सारे मोहल्ले को इकट्ठा करते हैं अपने हंसी के साथ। डोंट लाउड, डोंट लाफ लाउडली, डोंट टीज पीपल हु आर डम मैड और इन नीड अगली और लेम और लाइक दैट। और हमें कोई कोई पंगु कहते, पंगु या पंग है या शारीरिक विकृतियाँ है, व्यंग विकलांग विकलांग यस, तो उनकी जो विकलांगता विकृति शरीर में देख के हंसी मजाक को करना। और कुछ भक्त के शरीर भी ऐसे हो सकते हैं, पैर नहीं है या आँख नहीं है या कोई है, तो उसके गुण देखो। ऐसे भक्त भी काफ़ी गुणी हो सकते हैं, अच्छे गायक हो सकते हैं। एक हमारा बम्बई में एक डिवोटी है धृतराष्ट्र, बहुत अंधा है लेकिन इतना जबरदस्त गायक है, कुछ पूछो नहीं, और मृदंग प्लेयर। तो वही गुण देखो। ओके, और या सदाचार भी चल रहे, थोड़े संबंध भी चल रहे हैं, या ऐसे जब विकलांग शरीर वगैरह है तो उसके संबंध में एक भक्त कहे, उस डोंगा पर ही रस नोहे डोंगा, वो समझते हो करना। कभी कभी वो डोंगा मतलब तिरछा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उस डोंगा परी रस नो है डोंगा, उसके अंदर का जो रस है वो वाकड़ा तिकड़ा नहीं, वो कैसा है, वो उतना ही मीठा है जितना दूसरे उसमें दूसरे गन्ने में वो मीठा है, मीठा से उतनी ही है। तो भाव, भक्त का भाव अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी वैष्णवता अधिक महत्वपूर्ण है, उसके सद्गुण अधिक महत्वपूर्ण। उसका शरीर कैसा है, या टेढ़ा मेढ़ा है, अष्टवक्र है या त्रिवक्र, वो कौन त्रिवक्र ही कुब्जा, भगवान इसको सीधा भी कर दिया। तो उसको बाहरी जो रूप रेखा है उसको न देखे, थोड़ा गहराई में जाके उनके गुण को देखे। डोंट रेप्रिमैंड एनी वन एक्सेप्ट यूर चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। रेप्रीमैंड मतलब डांटना फटकारने का अधिकार आपको, आपके जूनियर्स है, आपके बच्चे है या आपके स्टूडेंट्स है, उसको आप समझे या कुछ, औरों को कहने का आपको अधिकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद जैसे आप कह सकते हैं या भगवान की ओर से कहते हैं, रस्कल्स डोंकीज कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद एक समय का मैं कह सकता हूं लेकिन आपको सावधान होगा, सावधान होना पड़ेगा, मेरी बात को सुन लेंगे चुप मार के, लेकिन आप कहोगे नकल करोगे मेरी तो फंस सकते हो, तो सावधानी। और उस स्पीच में कहा, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, एक लवे के ट्रम्पेट की बात नहीं है। तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी अपनी स्वयं का बड़प्पन, अपना स्तुति, डिंग डिंग मारना भी कहते हैं, अपनी स्तुति हर पग पग पर मौका देख के, या मौका नहीं भी है, अपनी खुद की बात घुसाड़ना, बढ़ाई चढ़ाई बढ़ाई। ऐसे लोग बड़े अनपॉपुलर होते हैं, ऐसे लोग खुद को विख्यात करना चाहते हैं लेकिन ऐसे वैसे कुविख्यात बन जाते हैं। इसीलिए वैसे सदाचार में औरों से पूछे आप कैसे हो, आपका सेवा के संबंध में आपका जो भी है, ये नहीं कि आपने स्वयं का ही भाषण, उनको मौका भी नहीं दिया और पूछताछ करें औरों में इंटरेस्ट दिखा दें, ये भी सम्मान हुआ, सत्कार हुआ उनका। ओके, तो अभी ये तो स्पीच का चल रहा था, नंबर टू था। अभी थ्री में कुछ पॉइंट्स है, ये थर्ड पॉइंट एसोसिएशन। तो कहा है कि डोंट डेवलप फ्रेंडशिप विद पीपल हु आर एनवियस, फॉलन, मैड, डिबॉचीज, लायर्स, हैव इलिसिट कनेक्शंस विद वुमेन और विद अनचेस्ट वुमेन। तो असत्संग त्यागात, ये वैष्णव आचार्य जो कहा है, तो असत्संग में सब आ गया, इसमें तो उसके नाम लिए है, असत्संग त्यागात। इतना कहने से शायद समझ में नहीं आ सकता है, तो इसका या इसको विस्तृत करके समझाया। ये लिस्ट भी वैसे कंप्लीट नहीं है लेकिन मोटे मोटे नाम लिए है, डिबॉची तो बहुत विषय, लंपट, लायर, जब भी बोलता है मैं जो भी बोलता हूँ झूठ के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ऐसा हमको कहना चाहिए लेकिन कहता क्या है, राधा प्रणाम के जा। तो ऐसे तो हो गया एनवीएस जो ईर्ष्यालु है, और भी कई अवगुण हो सकते हैं, या दैवी संपदा और आसुरी संपदा वाले, तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, दूर रहे। फोर्थ, इफ समवन इंसल्ट्स यू, लीव द प्लेस क्वाइटली। ये आपका क्या करता है, इंसल्ट, अपमान करता है तो आप उल्टा, आदर नहीं होता आपका, आप वहाँ से क्वाइटली वहाँ से जा सकते हो। पांचवा, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव सर्विस टू द वैष्णवस। हमें सब समय सदैव वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वर्शिपिंग कृष्णा मस्ट बी अकम्पनीड बाय सर्विस टू द डिवोटीज। तो कृष्ण की सेवा, केवल कृष्ण की सेवा नहीं, कृष्ण की सेवा के साथ भक्तों की सेवा होनी चाहिए, अकम्पनी साथ में या बगल में या बाद में भी थोड़ी हो सकती है, केवल कृष्ण की सेवा नहीं, कृष्ण भक्तों की, वैष्णवों की सेवा, फिर वो सेवा पूर्ण हो गई, केवल कृष्ण की सेवा अधूरी रह गई, फिर आपकी सेवा अधूरी रह गई। नेवर टेक साइड्स इन डिस्प्यूट बिटवीन डिवोटीज। जब दो भक्त के मध्य में कोई डिस्प्यूट है या कोई वाद है, वाद विवाद है, कंट्रोवर्सी है, तो आप निष्पक्ष रहे, किसी गट में, इस गट में उस गट में ना घुसे ना फंसे, न्यूट्रल रहे। वी आर सर्वेंट्स, नेक्स्ट बात, वी आर सर्वेंट्स, देयरफॉर वी एड्रेस अदर्स एज प्रभुज और माताजीज, मास्टर। औरों को प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन प्रभु मतलब वो प्रभु है, हम कौन हो गए, दास हो गए, कहा तो हमने प्रभु लेकिन फिर हमारा हम बॉस बन के प्रभु मेरा कपड़ा साफ करो प्रभु, तो उनकी सेवा करें। अमृता विनम्रता, सेवा भी लेनी देनी है तो उसका भी कहने का भाव। ओके, यहाँ लिखा है कि बाय ऑफरिंग ऑबेसेंसेस
one can get free from sinful reactions.
औरों को प्रणाम करने से हमारी पाप वृत्ति, पाप बुद्धि, वासना से मुक्त हो सकते हैं. वैष्णव को प्रणाम किया, प्रार्थना की, नमस्कार किया, तो get free from sinful reactions. And one is purified and can attain the lotus feet of Lord Hari, Sri Hari. हम शुद्ध भी होंगे और भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे. और यह लिखा है, the God brothers of Guru should be respected just as Guru himself. तो गुरु के जो गुरु भाई है, गुरु के गुरु भाई, हमारे गुरु के गुरु भाई, उनका सम्मान सत्कार वैसा ही करे जैसे गुरु का आप करते हो. वे भी आपके गुरु है, शिक्षा गुरु है, गुरु है, वैष्णव है. और अंत में इस विष में कहा है, डिवोटीज ऑलवेज लुक्स फॉर रीजंस टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स. तो भक्त को देखना चाहिए, कोई कारण ढूंढना चाहिए, मैं कैसे रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, इस भक्त की कैसी सम्मान सेवा कर सकता हूँ. ऐसा कोई कारण मिलता है, कोई बहाना मिलता है, कुछ एक्सक्यूज मिलता है, तो चलो ढूंढता हूँ मैं इसकी सेवा करने का. ये बहुत बड़ी बढ़िया बात कही लिखी है. कोई कारण ढूंढे सेवा लौल्यम, ओके, सेवा के लिए लालायित या उत्कंठित. तो ये वैष्णव सदाचार, वैष्णव संबंध बहुत बड़ा विषय है, टॉपिक है, और इसको अधिक अधिक समझ के हम ज्ञान से युक्त है तो फिर हमारी जो एक्शन है ज्ञान के साथ, हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं या व्यवहार कर सकते हैं. वो भी मैंने पढ़ा था व्यवहार की बात. व्यवहार जब शब्द आया तो मुझे एक वचन स्मरण हुआ, चैतन्य चरितामृत में से चैतन्य. धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार का है. धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार. साधु का व्यवहार किस लिए होता है या उससे क्या सिद्धि होती है? धर्म स्थापन हेतु, धर्म की स्थापना हेतु वैष्णव का, साधु का व्यवहार या लेन देन या संबंध या जो भी उसके सारे कार्यकलाप, उसकी विचारधारा, उसका उस पर अमल, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार. तो वैष्णव धर्म वाढवावा काय म्हण मराठा ते तुका मिळवावा, वैष्णव जितका मिळवावा, वैष्णव धर्म वाढवावा. तो जितने अधिक वैष्णव की संख्या बढ़ा के वैष्णव धर्म को बढ़ाना, वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की स्थापना, हमारे संबंधों से, हमारे एक दूसरों के प्रीति लक्षणों से, हमारे सारे कार्यकलापों से, हम सभी को इकट्ठे होके ऐक्य भाव से, एकता से क्या होगा? धर्म की स्थापना होगी. जिस कार्य के लिए भगवान, जिस उद्देश्य से भगवान प्रकट होते हैं, वो तो युगे युगे समय समय पर वे प्रकट होते हैं, लेकिन जब भगवान की प्रकट लीला विद्यमान नहीं रहती संसार में, तब वो कार्य कौन करता है? परंपरा में आने वाले आचार्य, भक्त, वैष्णव सब मिलके भगवान का कार्य कर, धर्म संस्थापनार्थाय ये कार्य हमको करना है, भागवत धर्म की स्थापना करनी है. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी सिद्ध होगा. वैष्णव तो वही है जो विष्णु ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम या विष्णु एव सर्वम इति जो जानता है वही वैष्णव है. इसी के साथ धर्म की स्थापना होगी. तो आज के दिन भगवान का प्राकट्य, कल की आज द्वादशी, वामन द्वादशी कहते हैं, द्वादशी वामन द्वादशी,
नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी और पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, दशमी का कोई है, विजयादशमी का होता है। इस प्रकार हर तिथि का कुछ न कुछ, तो वामन द्वादशी के दिन प्रकट हुए, तो वामन प्रकट है तो कल का है, उपवास है आज।